जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आइए प्रेम से कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंध 9 अध्याय 20 श्लोक 27 त्रयस्त्रिंशत्शतं यश्वा बद्ध्वा विस्मापयन् नृपा दोष्मन्तीरस्य गान् माया देवानां गुरुमाययो त्रयस्त्रिंशत्शतं यश्वा बद्ध्वा विस्मापयन् नृपा दोष्मन्तिरत् त्यगान् माया
सेवानां गुरुमाययो त्रयस्त्रिंशत्शतं यश्वा बद्ध्वा विस्मापयन् नृपा दोष्मन्तिरत्यगान् माया देवानां गुरुमाययो तीन त्रिंशत् त्रिंशत् तीस शतम् सो ही निसंदेह अश्वान घोड़ों को बद्ध्वा यज्ञ में बंदी करके विस्मापयन् आश्चर्यचकित करते हुए नृपान सारे राजाओं को दोषमंती महाराज दुष्यंत का पुत्र अत्यगान बाजी मार ले गया मायाम भौतिक ऐश्वर्य को देवानां देवताओं का गुरुम गुरु आययो प्राप्त किया। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिविधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने उन यज्ञों के लिए 3,300 घोड़े बांधकर अन्य सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। उसने देवताओं के ऐश्वर्यों को भी मात कर दिया क्योंकि उसे परम गुरु हरि प्राप्त हो गए थे। तात्पर्य, जिसे भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं वह स्वर्ग लोक के देवताओं के ऐश्वर्य से भी आगे बढ़ जाता है। जिसे भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं वह स्वर्ग लोक के देवताओं के ऐश्वर्य से भी आगे बढ़ जाता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम वन्यते नाधिकम ततः। भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शॉर्ट एंड स्वीट तात्पर्य। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं राजपीठ के ऊपर बैठा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति दिवसीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए भागवत सत्र का प्रारंभ चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत एवं मत को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करें। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो न पर श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न पर। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवत समस्त प्रमाणों का भी प्रमाण है। श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान। मनुष्य जीवन के जो पुरुषार्थ हैं, प्राय संसार के मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार वस्तुओं की प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही 88,000 ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी से पूछा, बताइए प्रभु मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? किसी भी बिजनेस को प्रारंभ करने से पहले प्रॉफिट और लॉस का है के बारे में विचार किया जाता है। बोले ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो बताइए ये मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रॉफिट लाभ क्या है? तब शुद्ध गोस्वामी कहते हैं जन्म लाभ परे पुंसाम। पुंसाम ये मनुष्य जीवन का मनुष्य के रूप में जन्म होने का परम लाभ यदि कोई है तो है अंते नारायण स्मृति ही। अंते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति हो जाना, स्मरण हो जाना, प्रेम हो जाना, ये मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस परम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान। वह है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत सुनकर हम मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस भागवत को समस्त इस्कॉन मंदिर में प्रातः भागवत श्रवण करने का विधान प्रारंभ किया। प्रस्तुत भागवत प्रसंग जो हम सुन रहे हैं यह है भागवत का नवम स्कंध और भागवत का नवम स्कंध ईशानु कथा के अंतर्गत है। भागवत के 10 तत्वों के अंदर एक तत्व है ईशानुग्रह। इस भागवत के नवम स्कंध में ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं का वर्णन हुआ है जिन राजाओं के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रही इस अनुग्रह, और भगवान की कृपा से इन राजाओं ने अनेक आश्चर्यचकित कार्य किए। तो उन राजाओं में से प्रस्तुत प्रसंग राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के चरित्र का वर्णन हो रहा है और राजा भरत ने अपने जीवन में किस प्रकार से शासन किया और अपने शासन काल में किस प्रकार से उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ की चर्चा आपने कल के श्लोकों में सुनी और आज भी कुछ श्लोकों में राजा भरत के द्वारा यज्ञ का वर्णन किया जा रहा है। भक्तों, राजा के द्वारा यज्ञ या प्रजा के द्वारा यज्ञ अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपसा न त्याज्यम एव। यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे कितने भी शुद्ध हो जाए, शुद्ध भक्त भी यदि बन जाए फिर भी यज्ञ दान और तपस्या अवश्य करना चाहिए। हालांकि गृहस्थ को, ब्रह्मचारियों को और सन्यासियों को भी दान यज्ञ और तपस्या करना चाहिए, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये यज्ञ दान और तपस्या पावनानी मनीषिणाम, ये 3 कार्य बड़े बड़े मुनियों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए बड़े बड़े मुनि जो अमल आत्मनाम हो चुके हैं, समस्त दोषों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी यज्ञ करते हैं। शौनक आदि ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ में यज्ञ करने के लिए ही तो नैमिषारण्य में उपस्थित हुए। तो यज्ञ करना चाहिए। इसके पूर्व श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं यज्ञ करना चाहिए, परंतु श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कलयुग में यज्ञ असंभव है, क्योंकि कलयुग में 5 चीज नहीं हो सकती है, अश्वमेघम गवालंबम संन्यासम पलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयेत। कलो पंच विवर्जयेत, विशेष रूप से कलयुग में पांच चीज वर्जित है और उनमें से सर्वप्रथम कहते हैं अश्वमेघम। एक और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ करना ही चाहिए, चारों युग में और चारों प्रकार के वर्णाश्रम धर्म के समस्त लोगों को यज्ञ करना ही चाहिए। ये यज्ञ आवश्यक मजबूरी है। और दूसरी ओर कहते हैं अश्वमेघ कलयुग में असंभव है यज्ञ। तब श्री प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि वास्तव में कलयुग में यज्ञ करना चाहिए, और कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है हरिनाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। और तात्पर्य में श्लोक कहते हैं कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस। इस संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग की बात कर रहे हैं, ये करभाजन ऋषि निमि महाराज को यह श्लोक बताते हैं कि इस कलयुग में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, सुमेधस। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो खैर यज्ञ होने चाहिए, और यज्ञ के विषय में राजर्षि भरत जी के विषय में यहां पर कह रहे हैं आज के श्लोक में, कहते हैं त्रयस्त्रिम शतशतम यशवान बद्वा विस्मापयन नृपान। दुष्यंत जी के पुत्र भरत जी ने ऐसा यज्ञ किया, कहते हैं अद्वितीय यज्ञ था। और इस यज्ञ में त्रयस्त्रिम शतशतम यशवान, अश्व का अर्थ होता है घोड़े। कहते हैं इस यज्ञ में राजा भरत ने 3300 घोड़े बधवा बांध कर उस यज्ञ में खड़े किए थे। ऐसे देखा जाए तो अश्वमेघ यज्ञ में एक ही अश्व होता है, एक ही घोड़ा होता है, और एक घोड़े को राजा छोड़ते हैं, वो घोड़ा पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, राजा को फैन आ जाता है उस घोड़े को प्राप्त करने में, क्योंकि दूसरे राजा महाराजा उस घोड़े को छीन कर अपने पास रख लेते हैं और ये राजा युद्ध करते हैं और उस घोड़े को लेकर आते हैं। तो अन्य अश्वमेघ यज्ञ में मात्र एक घोड़े को बांधकर उस यज्ञ में खड़ा किया जाता है, लेकिन दुष्यंत के पुत्र भरत ने एक नहीं 3333 घोड़े बांधकर खड़े कर दिए। तो मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि 3300 गिनकर सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता चला, 3300 घोड़े गिनकर बैठे थे? महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु परफेक्ट फिगर बताइए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्तम यशवान ही शब्द लगा है। वैसे लिखा है अश्वान, अश्वान माने घोड़े, लेकिन ही का अर्थ है निश्चित ही परीक्षित 3300 घोड़े थे, इसमें से एक कम नहीं और एक ज्यादा नहीं। तो अन्य अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा और राजर्षि भरत ने 3300 घोड़ा, और इसीलिए बधवा उस घोड़े को बांधकर उस यज्ञ में खड़ा किया था। इसलिए नृपा जितने भी राजा महाराजा आए थे विस्मापयन विस्मित हो गए। अन्य जितने भी दुनिया के राजा थे, ये समस्त राजा 3300 घोड़े को बांधकर जब देखा तो विस्मित हो गए कि हम लोग एक एक घोड़े को बांध नहीं सकते, इस दुष्यंत के पुत्र भरत ने 3300 घोड़े बांध रखे हैं। तो समस्त राजा विस्मित हो गए। आपने पूर्व के श्लोक में भी सुना किस प्रकार से राजर्षि भरत ने यज्ञ किया और यज्ञ में कितना वैभव था, यज्ञ में कितना धन इत्यादि अलंकार लगा हुआ था। तो यहां पर एक सिद्धांत स्थापित होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को यज्ञ करना होता है तो यज्ञ में अपना मन बड़ा रखना चाहिए। यज्ञ करते समय यजमान को मन में थोड़ा भी खटका रह गया, यज्ञ करते समय यजमान मन में थोड़ा भी मन को पीछे खींचेगा या मन को संक्षिप्त कर लेगा तो उसे यज्ञ का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म नंद बाबा के घर पर हुआ और नंद बाबा ने यज्ञ किया, वहां पर भी एक बात आई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद तु आत्म जो उत्पन्न जाता लाद महामना। नंद महाराज का मन कैसा था? महामना, महान मन वाले थे। और मन को महान करके उन्होंने यज्ञ किया, दान किया, ब्राह्मणों को बुलाया। तो जब भी हमें यज्ञ करना हो हमारे मन को महान रखना चाहिए, मन को संक्षिप्त नहीं रखना चाहिए। तो ये हुई द्रव्य यज्ञ की बात जहां होम आहुति। लेकिन कलयुग के संकीर्तन यज्ञ करते समय भी मन को महान रखना चाहिए, मन को बहुत छोटा नहीं बना लेना चाहिए, महान मन। दूसरों के प्रति दुर्भावना न रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, दूसरों को आदर करने की भावना, दूसरों को सुखी करने की भावना। महान मन रखते हुए जब यज्ञ किया जाता है तब निश्चित रूप से उस यज्ञ का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो यह सिद्धांत यहां से साबित हुआ। आगे तीसरी लाइन में कहते हैं, दुश्मन तीर अत्यगान माया। दुश्मन्ति का अर्थ होता है दुष्यंत के पुत्र भरत। तो दुश्मन्ति बार बार इन श्लोकों में करवाया जा रहा है कि उस भरत की बात है जो राजा दुष्यंत के पुत्र है। परंपरा तो आप जानते ही हैं, ये परंपरा प्रारंभ हुई ययाति महाराज से, है ना। ययाति महाराज के चार पुत्र थे, उन चार पुत्र में से एक पुत्र का नाम था पुरु। पुरु के पुत्र हुए प्रचीनवान, प्रचीनवान के प्रवीर, प्रवीर से मनुष्य, मनुष्यु, मनुष्य से चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु के बहुगव, बहुगव के संयाति, अहमयाति, रुद्राश्व, रुद्रकेशु, रंतिनाव, सुमति, रेभी और दुष्यंत। और दुष्यंत का विवाह हुआ शकुंतला के साथ। ये प्रसंग भी हमने सुना किस प्रकार से राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में गए और शकुंतला को देखकर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। और शकुंतला ने कहा, मैं तो ब्राह्मण कन्या हूँ, आप क्षत्रिय हो, हमारा विवाह कैसे हो सकता है। परंतु राजा दुष्यंत को अपने ऊपर और अपने पूर्वजों के ऊपर इतना विश्वास था, बोले हमारा मन कभी पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता है, तुम ब्राह्मण की कन्या हो ही नहीं सकती, मैं क्षत्रिय, मेरा मन क्षत्रिय की कन्या के ऊपर ही जा सकता है, तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं हो सकती। उसी समय महर्षि कण्व आए और उन्होंने बताया कि वास्तव में ये विश्वामित्र की कन्या है जो मेनका से उत्पन्न हुई थी। और दुष्यंत जी ने शकुंतला के साथ विवाह किया और उनसे दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था भरत। तो दुष्यंत जी के चरित्र को याद कराया, ये महान राजा दुष्यंत के पुत्र भरत है। इसलिए कहते हैं दुश्मन्ति, दुश्मन्ति का अर्थ होता है दुष्यंत के पुत्र भरत। अति गान मायाम, अत्यगान मायाम, भरत ने मायाम अत्यगान। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायाम अत्यगान का अर्थ है कि भरत जी ने समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए। इन यज्ञों के द्वारा भरत जी ने मायाम माने भौतिक ऐश्वर्य, समस्त भौतिक ऐश्वर्य को अत्यगान प्राप्त कर लिए। तो यहां पर शब्द के ऊपर रसास्वादन करने के लिए बहुत सुंदर विषय है। कहते हैं दुश्मन्तिर अत्यगान मायाम, समस्त माया के ऊपर विजय कर लिया। माया का अर्थ होता है धन, ऐश्वर्य, वैभव। तो वास्तव में इस संसार में जितना भी धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, ये सब कुछ माया के समान। श्री प्रभुपाद जी सीधा कहते हैं माया उसे कहते हैं जो नहीं है। इस संसार की संपत्ति भी होते हुए भी नहीं है, इस संसार का ऐश्वर्य होते हुए भी नहीं है, क्योंकि संसार का धन संपत्ति ऐश्वर्य स्वप्न के समान है। रात को सोते समय एक दो घंटे के लिए स्वप्न आता है और स्वप्न में हम धनी बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं, परंतु जैसी नींद खुलती है वास्तव में कुछ नहीं होता है। ऐसे ही संसार में कितना भी मेहनत करके धन संपत्ति ऐश्वर्य एकत्रित किया जाए, परंतु वास्तव में हमारा जीवन एक स्वप्न के समान है। जैसे रात को सोते हैं तो एक घंटे का स्वप्न, हमारा जीवन ये 100 साल का स्वप्न है, परंतु वास्तव में आखिर ये स्वप्न ही है। वास्तविक जीवन तो हमारा कुछ और ही है, ये तो स्वप्न के समान। और इस जीवन रूपी स्वप्न में हम जो धन एकत्रित कर रहे हैं वो धन भी स्वप्न माया के समान। इसलिए यहां पर धन ऐश्वर्य संपत्ति नहीं लिखा, यहां पर माया कह दिया कि राजा भरत ने समस्त धन ऐश्वर्य को अपने पास एकत्रित कर लिया, अर्थात माया को एकत्रित कर लिया। तो धन संपत्ति माया है, परंतु संसार के लोग, कुछ कुछ लोग इस बात को जानते भी हैं परंतु जीवन में धारण नहीं कर सकते। अब जैसे हमने कह दिया कि ये धन संपत्ति ये सब माया है, लेकिन हम खुद धन और संपत्ति में फंसे हुए हैं, खुद धन के फेरे में चक्कर में पड़ते हैं। तो संसार में कुछ बात शास्त्र की ऐसी है जो जानते हैं लेकिन जीवन में धारण नहीं हो रही, जीवन में अप्लाई नहीं हो रही। परंतु ये बात जीवन में अप्लाई कैसे हो, यह सिद्धांत जीवन में कैसे उतर जाए कि ये वास्तव में धन संपत्ति कुछ नहीं है। तो इस विषय में सुखदेव गोस्वामी भागवत के 9वें स्कंद के 4th अध्याय में राजा अम्बरीश की कथा सुनाते हुए कहते हैं, मैंने अति दुर्लभम पुंसाम सर्व तत्स्वप्न संस्तुतम। महाराज अम्बरीश के पास बहुत धन था, उनके विषय आया सप्त द्वीपवती महिम, ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। और कहते हैं उनके पास इतना धन था, इतना धन था, आज के किसी बहुत बड़े विद्वान के पास भी वह धन आ जाए तो तुरंत वह पैजा में से बाहर हो जाएगा और इतना अभिमानी और अहंकारी हो जाएगा कि मरने के बाद नरक में जाएगा। डेफिनेटली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अम्बरीश के पास जो धन था, आज किसी विद्वान किसी पंडित के पास भी यदि वह धन आ जाए फिर भी वह पागल हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा। लेकिन अम्बरीश के पास वह धन था तो अम्बरीश महाराज उस धन को क्या समझते थे, यत इदम लोष्टवत स्मृतम। इतना इतना धन होते हुए भी महाराज अम्बरीश उस धन को माटी का ढेला थे कि धन क्या है, माटी का ढेला, मिट्टी है ये धन। तो इस प्रकार धन होते हुए भी उस धन में ऐश्वर्य बुद्धि न रखना, माटी के ढेले के समान उस धन को समझना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग मात्र बोलना जानते, मेरे जैसे लोग मात्र बोलना जानते हैं धन माया है, जैसे यहां पर कहा गया माया, ये धन जो है माया है। लेकिन अम्बरीश महाराज के तो जीवन में ये आ चुका था, धन जो है वास्तविक माया। तब महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, अम्बरीश महाराज के पास इतना सारा धन होते हुए भी उनकी धन में आसक्ति नहीं थी, वो धन को माया समझते थे और उस धन की आसक्ति दूर रहते थे, इसका कारण क्या था, ये संभव कैसे हो सका, इतना सारा धन होते हुए भी वह धन को माया समझते थे कैसे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि महाराज अम्बरीश अपने मन को भगवान में लगा चुके थे। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा चुके थे और वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, और अपनी वाणी भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगा चुके थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जन करने में लगा चुके थे। और श्रुतिम चकारा च्युत सत कथोदय, और अपना कान भगवत कथा श्रवण करने में लगाए थे। मुकुंद लिंगालय दर्श नेत्रिशो, अपनी आंखें मात्र भगवान का दर्शन करने में लगाए थे। तदभृत्य गात्र स्पर्श से अंग संगमम, और अपने शरीर अपनी त्वचा को भक्त का आलिंगन करने में लगाए थे। ज्ञानम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपनी नासिका को भगवान के चरणों में तुलसी और चंदन लगे हुए उन नैवेद्य को सुंघने में लगाए थे। और श्रीमद तुलस्या रसना भी वंदने, और अपनी रसना अपनी जीवा भगवान का पवित्र प्रसाद खाने में लगाए थे। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, एक एक पॉइंट ध्यान में रखिए। अपने चरण को भगवान के मंदिर में जाने के लिए लगाए थे शिरो ऋषि केश पदाभिवंदन, और अपना मस्तक भगवान के चरणों में झुकाने के लिए प्रणाम करने में लगाए थे। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति, और हृदय में काम उत्पन्न होता था, इच्छा उत्पन्न होती थी, वे काम और इच्छा मात्र भगवान की सेवा करने में लगाए थे। और एवं सदा कर्म कलाप मात्मन परेधि यज्ञ भगवत अधोक्षज, और इस प्रकार अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान के साथ जोड़ दिया था। आंख भगवान का दर्शन, हाथ भगवान की सेवा, चरण भगवान के मंदिर में जाने के लिए, कान श्रवण करने के लिए, जीवा कीर्तन करने के लिए, जब समस्त अंगों को भगवान में लगा दिया, परेधि यज्ञ भगवत अधोक्षज, ये सब करते हुए वे अपना बिजनेस चलाते थे, वे अपना काम करते थे। और अपना काम करते करते महाराज अम्बरीश के पास इतना धन इतना संपत्ति आ गया, फिर भी यह सब भगवत भक्ति के कार्य करने के कारण यह धन और संपत्ति को माया समझते थे। तो हमें भी इस धन और संपत्ति, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं धन और संपत्ति तो चाहिए, बिना धन और संपत्ति के कुछ काम नहीं हो सकता है। एक आदमी प्रभुपाद जी के पास आया, बोले प्रभुपाद मैं एक जगह पर गया, वहां पर एक बहुत बड़े महाराज थे, वो पैसे को छूते नहीं थे। कोई आदमी उसे पैसा डोनेशन देने के लिए आया और कह दिया हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। और प्रभुपाद हम तो लोगों से पैसे मांगते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि मुझे कोई 10 करोड़ रुपये, तो मैं 10 करोड़ रुपये को ऐसे पकड़ूंगा और आप उसके फोटो खींचकर न्यूज़पेपर में अखबार में सब जगह पर दे देना, मैं उस धन को लेने के लिए तैयार। संसार के बाबा बापू भले धन को छोड़ दे, मुझे तो धन चाहिए। रोबा जी ने कहा कि फोटो खींचकर छाप देना। तो धन लेना, धन कमाना, धन रखना, ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इन धन को रखते हुए धन का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप को समझना ये महत्वपूर्ण चीज है। तो धन का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं माया, अत्यगान माया। धन का वास्तविक स्वरूप है माया। तो इस प्रकार महाराज अम्बरीश भक्ति के, नवदा भक्ति के इन कार्यकलाप करने के कारण धन होते हुए भी धन में आसक्त नहीं थे। तो यहां पर कहा गया कि ये समस्त धन के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे राजा दुष्यंत के पुत्र। आगे कहते हैं कि धन को, इतना इतना धन होते हुए भी, माया के बीच में रहते हुए भी दुष्यंत के पुत्र भरत माया में क्यों नहीं फंसे, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर देते हुए अंतिम लाइन में कहते हैं देवानाम गुरु माययो, क्योंकि वे गुरु की पूर्ण रूप से सेवा करते थे। इस संसार में यदि माया से मुक्त होना है तो क्या करना होगा, ये प्रश्न निमि महाराज के यज्ञ में महाराज निमि नव योगेश्वर से पूछते हैं। तो कहते हैं यदि तात्मेश्वरी माया दुस्तराम कृतात्म भी, तो कहते हैं प्रभु बताइए माया से मुक्त होने के लिए संसार के जीव को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये माया जो है दुस्तराम, माया को समझना उसे पार करना दुस्तर है, बहुत मुश्किल है। और माया कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, कभी स्वर्ग में कभी नरक में, कभी इंद्र बनाती है तो कभी कीड़ा बना देती है, संसार के जीव को तड़पा तड़पा कर मारती है। इस माया से मुक्त होने का उपाय बताइए। और कैसा उपाय बताइए? कहते हैं तरंत्य जो स्थूल धियो, स्थूल बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला एक मूर्ख व्यक्ति भी आसानी से माया को प्राप्त कर ले, माया से मुक्त हो जाए, ऐसा उपाय। महर्षि एतद उच्चताम, हे महर्षि आप माया से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो जब इस प्रकार से पूछा तब नौ योगेश्वर में से भगवान ऋषभ देव के नौ पुत्र में से प्रबुद्ध ऋषि कहते हैं कि यदि माया से मुक्त होना चाहते हो तस्मात, तस्मात माने इसलिए, देयरफॉर, माया से मुक्त होना चाहते हो तस्मात इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कहते हैं तस्मात गुरु प्रपद्येत, माया से मुक्त होने के लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। और यहां पर भी यही कहा गया कि सभी माया से मुक्त हो गए, क्यों? क्योंकि देवानाम गुरुम आययो, गुरुम आययो, क्योंकि वो गुरु के शरण में थे। आगे आपने सुना कि मैं गुरु का नाम तो भूल गया, आपने कथा में सुना होगा कि भरत ने सबसे पहले गुरु बनाया, गुरु बनाकर गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत उन्होंने ये यज्ञ किए, और गुरु के मार्गदर्शन में जब उन्होंने जीवन के कार्य किए तब जाकर वह सफल हुए। तो यहां पर इतना ऐश्वर्य होते भी भरत माया में नहीं फंसे, इतना धन संपत्ति होने के पर भी माया में नहीं फंसने का कारण कहते हैं माया से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णांतम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। जो गुरु शास्त्र में प्रवर होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, इस प्रकार से जिज्ञासा लेकर गुरु के पास जाइए। और गुरु के पास जाकर क्या करना चाहिए? तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत, जहां पर पूछा गया माया से मुक्त होने के लिए क्या करें, तो कहते हैं सबसे पहले गुरु के पास जाओ और उस गुरु से क्या सीखो, सीधा कहा गया तत्र उस गुरु से भागवतान धर्मान शिक्षेत, उस गुरु से भागवत धर्म के विषय में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए माया से मुक्त होने के लिए। और साथ ही साथ गुरुवात्म देवतः, गुरु को आदर देना चाहिए। अमायया अनुवृत्या एष आत्मद जो हरि सर्वतो मनसो संगम, गुरु से क्या सीखना चाहिए? इस संसार में समस्त आसक्तियों से मन को दूर करना, और संगम से साधुषु, और वही आसक्ति साधुओं में लगाना, है ना, दुनिया से आसक्ति से मुक्त होना और साधुओं में आसक्ति लगाना, ये गुरु से सीखना चाहिए। दयाम मैत्रीम प्रशयम च, कहते हैं जो अपने से छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, या अपने से गुणों में छोटे हैं, या अपने से भक्ति में जो छोटे हैं उसके ऊपर दया करनी चाहिए। बहुत सुंदर ये शिक्षा है कि माया से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाकर क्या क्या सीखना चाहिए, एक एक पॉइंट भागवत में बताया। गुरु के पास जाकर क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले हम लोग तो गुरु के पास जाकर, हम लोग माने मैं, हम मेरे जैसे लोग गुरु के पास जाकर गुरु बनना सीखते हैं, लेकिन गुरु के पास जाकर पहले शिष्य बनना सीखना चाहिए। तो शिष्य बनना कैसे शिष्य? तो कहते हैं दयाम, गुरु के पास जाकर गुरु के चरणों में रहकर दया सीखनी चाहिए। किस पर दया? तो जो हमसे उम्र में छोटे हैं, छोटी उम्र वालों के ऊपर स्वाभाविक दया होनी चाहिए, और जो हमसे गुणों में छोटे हैं उनके ऊपर स्वाभाविक दया होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास हमसे कम गुण है इसमें सब तो कुछ बुद्धि ही नहीं है, इसके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, नहीं, गुरु से सीखना चाहिए कि कम गुण वालों के ऊपर दया करनी चाहिए। बेचारे के पास कम गुण है, चलो मेरे पास थोड़े ज्यादा गुण है ना, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। जिनके पास कम भक्ति है तो कम भक्ति वालों के ऊपर दया करनी चाहिए, बेचारा भक्ति में कम है, बेचारा फंसा है, तो उसके ऊपर दया। हम लोग क्या करते हैं, जो कम भक्ति है उसके ऊपर निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये तो मंगला आरती में आता ही नहीं, ये तो ये करता ही नहीं, उसके ऊपर दया करें। दया करे, उसे सपोर्ट करे, उसे समझाए, उसे मनाए, उनको अपना संग प्रदान करे। तो दया का आचार्यगण लिखते हैं, दया का दूसरा अर्थ होता है प्रचार। जो हमसे कम है, उम्र में कम, गुणों में कम और भक्ति में कम, ऐसे लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए। ये किससे सीखना है? गुरुदेव से। आगे कहते हैं मैत्री, जो हमारे समान है, जो हमारे साथ, हमारे सम उम्र वाले हैं, सम गुण वाले हैं, और हमारे समान जो भक्ति वाले हैं, उसके साथ मित्रता रखनी चाहिए। मित्रता का अर्थ होता है उनके साथ ही रहना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना खाना उन्हीं के साथ होना चाहिए जो हमारे समान है, है ना। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी कह रहे थे कि हम लोग, हमसे जो नीचे हैं, भक्ति में नीचे, उम्र में नीचे, गुणों में नीचे, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रह लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारी सेवा करते हैं, प्रभु जी आप महान हो, आप प्रचारक। और हमसे जो बड़े हैं, गुरु सन्यासी, उनके साथ भी हम लोग रह लेते हैं, परंतु हमारे समान वाले जो लोग हैं उनके साथ हम लोग नहीं रह पाते। परंतु राधानाथ महाराज कह रहे थे कि यदि जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे जो समान वाले लोग हैं, हमारी समकक्ष लोग, उनके साथ रहना सीख लेना चाहिए। क्योंकि छोटे लोगों के साथ रहोगे तो अभिमान बढ़ेगा, छोटे लोग तो यही प्रशंसा करेंगे आप महान हो आप बड़े हो, और बड़े लोगों के साथ रहोगे तो वो हमको पूरा पूरा जानते नहीं है, है ना। लेकिन समान लोगों के साथ रहोगे तो कभी भी अभिमान नहीं बढ़ेगा, है ना। समवयस्क के साथ रहोगे, ए आज तेरा झाड़ू मारने का टन है, चलो झाड़ू मारो, आज तुम्हारा प्रसाद बनाने का टन है, मैं जानता हूं तुम क्या हो, समान वयस्क। इसलिए समान वयस्क, समान भक्ति, समान साधना के साथ, भक्तों के साथ रहने से कभी भी अभिमान और अहंकार नहीं बढ़ता। तो ये समान भक्तों के साथ रहना, ये गुरुदेव से सीखना चाहिए। प्रायः छोटों के साथ रह लेते हैं, बड़ों के साथ रह लेते हैं, लेकिन समान भक्ति में जो है उनके साथ मन मोटाव, मतभेद, मनभेद ये सब होता है। लेकिन समान लोगों के साथ कैसे प्रेम से रहना, ये गुरु से सीखना चाहिए। ये सब दीक्षा लेने के बाद गुरु से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर्तव्य, ये बात निमि महाराज के यज्ञ में प्रबुद्ध ऋषि बता रहे हैं। तो दया मैत्रीम प्रशयम च, प्रशयम का अर्थ होता है सेवा, प्रकृष्ट रूपेण सेवा। जो हमसे बड़े हैं उनकी पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए, वाणी सेवा, वपु सेवा, ये बहुत सारा विषय है। भूतेश्व अद्दा यथोचितम, और संसार के जितने भी जीव हैं उनके साथ यथा उचित व्यवहार करना, ये गुरु से सीखना चाहिए। शोचम, पवित्र रहना ये सीखना चाहिए। तप, गुरुदेव से तपस्या सीखनी चाहिए। तितिक्षा, सहन शक्ति सीखनी चाहिए। मौनम, स्वाध्यायम, आर्जवम, मौन सीखना चाहिए। कैसे अध्ययन करना शास्त्र का ये सीखना चाहिए। सर्वत्रम ऐश्वरम अन्वीक्षाम, समस्त जगह पर भगवान का दर्शन करना, समस्त वस्तुओं में भगवान को देखना, ये गुरु से सीखना चाहिए। तो इस प्रकार श्रद्धाम भागवते शास्त्र, भागवत में है किस प्रकार से कितनी श्रद्धा रखना, ये गुरु से सीखना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, ये श्रवण कीर्तन ध्यान, हरेर अद्भुत कर्मण, भगवान के जितने भी अद्भुत अद्भुत कर्मण है, कर्म है, लीला है, ये सब कुछ गुरुदेव से सुनना चाहिए। और फिर ये सब बताने के बाद अंत में कहते हैं कि इस प्रकार इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्तिया तद उत्थया, इस प्रकार से गुरु के पास जाकर जो व्यक्ति इन सारी बातों को सीख लेता है, नारायण परो मायाम, वह नारायण की शक्ति जो माया है, उस माया से अंजसा तरती, उस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो व्यक्ति, हम लोग माया के बीच में है, धन संपत्ति, यह समाज, यह संसार माया से ही निर्मित है। तो माया से निर्मित संसार और माया से निर्मित वस्तु में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें माया से मुक्त रहना है। तो उस माया से मुक्त रहने के लिए गुरु के पास जाकर ये सारी चीज सीखनी चाहिए। और अंत में सूत्र के रूप में कहते हैं कि गुरुदेव के पास जब तितिक्षा और ये सारी चीज सीख लेते हैं तो अंजसा हम तुरंत माया से मुक्त हो जाते हैं। फिर माया हमारे पास होगी परंतु माया से हम भिन्न रहेंगे। तो इस प्रकार यहां पर कहा गया कि दुष्यंत के पुत्र भरत के पास इतनी ऐश्वर्य इतनी संपत्ति थी लेकिन फिर भी उस संपत्ति को माया समझते थे, उनसे मुक्त थे, उनमें आसक्त नहीं थे। इसका कारण गुरु, क्योंकि वह गुरु के शरण में थे। शिल प्रभुपाद जी इसका एक दूसरा अर्थ भी करते हैं। यहां पर प्रभुपाद जी गुरु का अर्थ करते हैं भगवान। शिल प्रभुपाद जी गुरु का एक दूसरा अर्थ करते हैं भगवान। और गुरु का अर्थ भगवान कहकर शिल प्रभुपाद जी कहते हैं द अचीवमेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द मोस्ट एक्सीलेंट अचीवमेंट इन द लाइफ। भगवान के चरण कमल की प्राप्ति ही मनुष्य को, भक्त को सबसे बड़ी उपलब्धि करा देती है। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु हूं माययो, देवानाम गुरु माययो। यदि कोई व्यक्ति गुरु का अर्थ यदि भगवान लिया जाए तो यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ा ऐश्वर्य और संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण की शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति देवताओं से भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि देवताओं के पास ज्यादा से ज्यादा क्या है, स्वर्ग है, स्वर्ग के भोग है। परंतु कृष्ण की शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं, वह तो वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। वैकुंठ ही नहीं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिनकी सेवा करती है, पूरा जगत जिनके पीछे घूमता है, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को एक भक्त भक्ति के द्वारा अपने वश में कर लेता है, भक्ति के बंधन में यहां तक उसे बांध देता है और बांध कर उस ब्रह्मांड के अधिपति भगवान को नचा देता है। यह है भक्ति का भाव। तो इस प्रकार इस श्लोक का कंक्लूजन भक्ति ही है। भक्ति करने से संसार की सारी संपत्ति प्राप्त होती है। सार ये है कि इस संसार में गधे और बैल की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति करने से धन और ऐश्वर्य बहुत मिलेगा, भक्ति करने से धन ऐश्वर्य मिलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं भक्ति करने की क्या जरूरत, शिव जी को अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो भी धन मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी के कहने का भाव यह है कि ऑफिस में जाकर अन्य देवी देवताओं की उपासना करके अन्य अन्य मेहनत करके आपको धन मिल सकता है, परंतु अन्य अन्य सोर्स के द्वारा यदि धन आएगा तो उस धन की आसक्ति में आप फंस जाओगे। लेकिन भगवान की कृपा से मिलने वाले धन में व्यक्ति कभी भी आसक्त नहीं हो सकता। और इसका ज्वलंत प्रमाण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के पास क्या नहीं मिला है ना, 36,000 वर्ष तक एक छत्र राज्य मिला, ध्रुव लोक ही मिल गया, इतनी सारी संपत्ति, लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल आसक्ति से मुक्त है। जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब वो अपने राज्य में आसक्त थे, मुझे राजगादी पर बैठना है, वे पूर्ण आसक्त थे। लेकिन जब भक्ति करने लगे और भक्ति करके उसे धन ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार भगवान कहते हैं ले लो लेकिन कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी थोड़ी चीज लालच दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कैसा शब्द इस्तेमाल किए जानते हैं, मुझे हंसी आ गई। कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है वही दुनिया को बाजी मार देता है, ये पूरे दुनिया के ऊपर राज करता है जो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है। तो जिसको धन चाहिए उसे भी, प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको धन चाहिए वो भी कृष्ण की शरण में जाए, क्योंकि कृष्ण की शरण में जाकर धन मिलेगा तो धन में आसक्त नहीं हो पाओगे। और दृष्टांत है भरत, इतना बड़ा यज्ञ था, इतना धन और ऐश्वर्य, आगे वर्णन है कि उस यज्ञ में मृगात शुद्ध कद कृष्णान हिरण्यन परिवृतान, ये सब कुछ हिरण्य सोने से बना हुआ था और अनेकों प्रकार के पशु वहां पर लाए गए थे। और फिर कहा गया, आगे कहा गया कि भरतस्य महत कर्म, भरत ने जो यज्ञ किया, दुष्यंत के पुत्र भरत ने जो कार्य किए, ये इन श्लोक में तात्पर्य नहीं है इसलिए मैं ले रहा हूं, आप चिंता मत करें। भरतस्य महत कर्म न पूर्वे न परे नृपा, दुष्यंत के पुत्र भरत ने जो अपने जीवन में कार्य किया, न तो भूतकाल में किसी राजा ने ऐसा किया था, न वर्तमान में कर रहा था, न भविष्य में कोई करेगा। इसमें लिखा है भरतस्य महत कर्म न पूर्वे न परे नृपा, भरत जी के जो कर्म थे ऐसा न तो किसी ने किया न कोई करेगा। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नेवा पुनेव प्राश्यंती बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा, क्योंकि भरत जी के तरह यदि कोई कार्य करना चाहता है तो वह तो वैसा ही सोचता है जैसे अपनी दोनों भुजाओं से स्वर्ग को करना चाहे, अपने दोनों हाथों से स्वर्ग को भेजना चाहे। जैसे दोनों भुजाओं से स्वर्ग को कोई भेज नहीं सकता है, वैसे भरत के जो कार्य किए ऐसा कोई इस दुनिया में राजा कर नहीं सकता है ना। तब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मेरा भी एक प्रश्न है, यहां पर श्लोक में क्या गया कि भरत ने जो कार्य किए ऐसा कोई नहीं कर सकता है। अब थोड़ा सा याद कीजिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के लगभग 16वें अध्याय में जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, ये सब चरित्र के बाद पांडवों का जन्म फिर परीक्षित का जब जन्म हुआ, महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तब कृपाचार्य और अनेकों ब्राह्मण को बुलाया गया और कहा गया कि आप परीक्षित महाराज परीक्षित की भविष्यवाणी कीजिए और उनका नामकरण कीजिए। तो परीक्षित की भविष्यवाणी करते समय क्या कहा था, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ब्राह्मणा ऊचू, समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर क्या कहा था परीक्षित के लिए, येष दाता शरण्यस्य यथा योशिनर शिबि, ये परीक्षित जो है शिबि महाराज की तरह श्वानर देश के राजा शिबि की तरह बहुत बड़ा दानी बनेगा, प्रथम बात। और फिर कहते हैं यशो वितनिता स्वानाम दोष्यंती इति यज्ञो नाम, दोष्यंती यहां पर है, वहां पर कृपाचार्य और सभी ब्राह्मणों ने कहा कि ये परीक्षित दोष्यंती दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह यज्ञ करेगा। और इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि भरत जैसा यज्ञ न पूर्व न चापर कभी भी कोई कर ही नहीं सकता है। अब ये प्रश्न मैं आपके बीच में छोड़ रहा हूं कि वही सुखदेव कह रहे हैं कि भरत ने जो यज्ञ किया कोई नहीं कर सकता और कृपाचार्य और सभी ब्राह्मण कहते कि ये परीक्षित भरत की तरह यज्ञ करेगा। तब इसका कंक्लूजन कल के जो वक्ता है आप सबको बताएंगे। मैं यहीं पर अपना प्रवचन समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सबका धन्यवाद, कीमती समय निकाल कर आए और आप सबकी कृपा से हम सही सलामत वापस आ गए। आशीर्वाद दीजिए भजन कर सके भक्ति में प्रगति कर सके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की।